पृष्ठ 73 एकांकी नाटक। इसी युग में एकांकी नाटकों का उदय हुआ। आरंभ में ये नाटक समय की पूर्ति के लिए खेले जाते थे। नाटक देखने के लिए कुछ लोग देर में आया करते थे। उन लोगों के लिए समय पर आने वालों को खाली बिठलाना उनके साथ अन्याय था, इसलिए आगंतुकों के मनोविनोदार्थ प्रधान नाटक के आरंभ में पूर्व छोटे नाटकीय दृश्य दिखलाए जाते थे। लोग इनको अधिक पसंद करने लगे। आधुनिक एकांकी नाटकों का इन्हीं से उदय हुआ। ये नाटक समय की बचत करने वाली मनोवृत्ति से अधिक अनुकूल हुए। यद्यपि संस्कृत में भी रूपकों के प्रकारों में एकांकी नाटक थे, जैसे भाण, अंक, व्यायोग, विधि, प्रसन्न। नाटकों ने पश्चिमी एकांकी नाटकों से ही प्रेरणा ग्रहण की। वर्तमान एकांकियों में प्राचीन एकांकियों के से रस, पात्र और संधियों आदि के नियम नहीं बरतते जाते हैं। वे अधिकांश में पाश्चात्य शिल्प के अनुकूल रचे जाते हैं। जिस प्रवृत्ति ने छोटी कहानियों को जन्म दिया है, उसी ने एकांकी नाटकों का प्रचलन कराया है। आजकल के पेचीदा जीवन में समय का अपेक्षाकृत अभाव रहता है, इसलिए इनका आविर्भाव समय की आवश्यकता के अनुकूल ही हुआ है। यूरोप में भी इनका आविर्भाव समय के सदुपयोग के लिए हुआ था। सभी आदमी नाटक देखने प्रायः कुछ देर से आते थे। उस समय तक अन्य आए हुए दर्शकों के मनोरंजन के लिए कुछ छोटे नाटकों की रचना की गई थी, जिससे उन लोगों का समय नष्ट न हो। इनको अर्थात पर्दा उठाने वाले कहते थे। उनके समाप्त होने पर ही प्रधान नाटक का आरंभ होता था। इनमें कहानी की सी एक तथ्यता रहती है। पात्र भी अपेक्षाकृत कम रहते हैं और संकलन त्रय का भी कुछ अधिक सुविधा के साथ पालन होता है। भारतेंदु काल के एकांकी तो प्राचीन आदर्शों पर ही रचे गए, किंतु वर्तमान एकांकियों ने पाश्चात्य देशों के एकांकियों से प्रेरणा ग्रहण की। हिंदी नाटक साहित्य पर बहुत कुछ पश्चिमी प्रभाव है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के नाटककार अंधानुकरण कर रहे हैं, वरन यह कि जो प्रवृत्तियाँ यूरोपीय नाटककारों के मन में काम कर रही हैं, वे हमारे यहाँ के नाटकों के मानस को भी प्रेरित कर रही हैं। स्वाभाविकता की पुकार हमेशा से चली आई है, उसके रूप बदलते रहे हैं। यूरोप से हमारे नाटककारों को उदाहरण मिल जाने के कारण उनका काम सरल अवश्य हो जाता है, किंतु उनको सब बातें देशी रंग में रंगनी पड़ती हैं। सिनेमा और रेडियो नाटक। सिनेमा अभिनयात्मक मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा और रेडियो नाटक दोनों ही नवीन युग के देन हैं और इन्होंने जनता में लोकप्रियता भी प्राप्त कर ली है। नाटक में जहाँ सजीव स्त्री पुरुषों द्वारा वास्तविकता की अनुकृति की जाती है, वहाँ सिनेमा पृष्ठ 74 में उनके छाया लोक में चलचित्र दिखाए जाते हैं, जिनके द्वारा मौखिक अभिनय वाचिक हो जाती होता है। सिनेमा में दृश्य विधान की प्रधानता रहती है और जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है, सिनेमा नाटक की बहुत सी न्यूनताओं को पूरा कर देता है। सिनेमा फोटोग्राफी और हाथ के बनाए हुए चित्रों द्वारा जो स्टेज पर असंभव होता है, उसको भी संभव कर दिखाता है। किंतु सिनेमा और नाटक में अंतर है। नाटक पढ़े और देखे दोनों ही जाते हैं। सिनेमा के लिए जो सिनेरियो लिखे जाते हैं, वे केवल पट पर दिखाए जाने के लिए ही होते हैं। इसलिए सिनेरियो में दृश्यों को आकर्षक और मनमोहक बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। आजकल नाटकों में से संगीत का अनावश्यक समावेश कम होता जा रहा है, किंतु सिनेमा में उसकी आकर्षकता बढ़ाने के लिए संगीत को विशेषकर चलते हुए संगीत को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए जनता के निम्न स्तरों में उस प्रकार के संगीत की मान्यता भी अधिक हो गई है। सिनेमा के नाटक पुराने पारसी नाटकों के बहुत अंश में निकट आ जाते हैं। श्रव्य काव्य में चाहे वह पद्ममय और चाहे वह गद्यमय वो केवल शब्दों का ही सहारा रहता है, उसमें कल्पना पर विशेष बल देना पड़ता है। शब्दों द्वारा ही सारा चित्र विधान उपस्थित किया जाता है। नाटक और सिनेमा में कल्पना पर कम बल डालना पड़ता है, इसलिए वे जन साधारण के लिए अधिक उपयोगी समझे गए हैं। उनको प्रचार का भी साधन बनाया गया है। पांडित्य की दृष्टि से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से नीचे उतर आता है, तभी तो उसको पंचम वेद कहा गया है, जिसमें शूद्रों को अर्थात अल्प बुद्धि वाले लोगों को भी अधिकार हो। इस दृष्टि से सिनेमा एक सीढ़ी और नीचे उतर आता है। सिनेमा में न तो भाषा की बारीकियों पर आश्रित वार्तालाप होते हैं और न चरित्र को प्रकाश में लाने वाले स्वगत कथन होते हैं। स्वगत कथन अस्वाभाविक चाहे हो, किंतु वे प्रायः पांडित्यपूर्ण होते थे। सिनेमा की भाषा जनता की भाषा होती है, उसमें चरित्र की अपेक्षा चमत्कार का प्राधान्य रहता है। रेडियो नाटक सिनेमा नाटक की भांति दृश्य और श्रव्य दोनों ही होता है, किंतु रेडियो नाटक केवल श्रव्य ही होता है। इसमें भी श्रव्य काव्य की भांति कल्पना का अधिक आश्रय लेना पड़ता है, किंतु उसकी ध्वनियां सजीव होती हैं, जिनके सूक्ष्म उतार चढ़ाव में लिखित शब्द से कुछ अधिक भावाभिव्यक्ति रहती है। आदमियों की गति आदि के भी चित्र उतरना चढ़ना, दरवाजा खटखटाना आदि तथा आहें सिसकियां, हंसना रोना, व्यंग्य और मुस्कुराहट का बदला हुआ लहजा, ये सब बातें शब्द द्वारा प्रसारित हो जाती हैं। मुख मुद्रा, भ्रुकुटी, संकोच, अश्रु, कंप आदि का द्योतन शब्द संकेतों द्वारा ही होता है। जिन अंग भंगियों का ध्वनि द्वारा चित्रण नहीं हो सकता है, उनका किसी पात्र द्वारा वर्णन कर दिया जाता है, यदि उनका वर्णन आवश्यक हो। दृश्य का बदलना, पर्दा गिरना नहीं होता है, वरन वाद्य संगीत का व्यवधान डालकर होता है। पृष्ठ 75। फिर भी उसमें सिनेमा का सा दृश्य विधान नहीं होता है। दूरी का अंतर समय में कठिनता से परिवर्तित हो पाता है। दूरी का भान तो सिनेमा में दृश्य विधान को कुछ लंबा करके नाटक से अधिक सफलता से कराया जाता है। रेडियो नाटक सिनेमा की अपेक्षा कम समय में होते हैं। वे अधिकांश में एकांकी की भांति होते हैं और इसलिए उनमें उतनी पेचीदगी भी नहीं होती है। रेडियो रूपक रेडियो नाटकों में समय का भी बंधन अधिक होता है, इसी कारण उसकी दूसरी विधा रूपक में, जिसको अंग्रेजी में फ्यूचर कहते हैं, प्रकथन अर्थात निरेशन को अधिक स्थान मिलता है। आवश्यक कथोपकथन के बीच में उनका तारतम्य जोड़ने वाले सूत्रधार या नरेटर द्वारा प्रकथन आ जाते हैं। उनके द्वारा समय की खाए पाट दी जाती है। सूत्रधार समय का संकेत जैसे 5 वर्ष बाद बीच की आवश्यक बातें कहकर आने वाले कथोपकथन की भूमिका बांध देता है। हिमालय नाम के रूपकों में प्रागैतिहासिक काल में अब तक का हाल है, इसलिए रेडियो के फीचर उपन्यास के अधिक निकट आ जाते हैं, किंतु उसमें उपन्यास किसी पात्रों की बहुलता और पेचीदगी नहीं रहती है, इसलिए चरित्र का भी विकास नहीं दिखाया जा सकता। प्रायः एकांकी नाटकों की भांति बने बनाए चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जाता है। कहीं कहीं विशेष आघात पड़ने पर परिवर्तन भी हो जाता है, किंतु विकास के लिए गुंजाइश नहीं रहती। यद्यपि रूपक शब्द नाटक से भी अधिक व्यापक है, क्योंकि नाटक रूपक की एक विधा है, तथा रेडियो में रूपक का व्यवहार नाटक से भिन्न इसी पारिभाषिक अर्थ में होता है, अर्थात जिसमें कि संवाद के साथ सूत्रधार द्वारा कुछ विवरण भी रहता है। ध्वनि प्रधान होने के कारण रूपकों में कभी कभी अनुकारियों अर्थात असली पात्रों कार्यों जैसे महात्मा गांधी या सरदार पटेल की वास्तविक वाणी का सुनाना भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड द्वारा किया जाता है। रेडियो नाटकों में केवल वाचिक अभिनय रहता है, सो भी अपूर्ण, किंतु कलाकार का कौशल इस बात में रहता है कि मार्मिक स्थल सब कथोपकथन में आ जाए। सिनेमा के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। रेडियो नाटक घर के कक्ष में ही सुने जा सकते हैं। यही उनकी सफलता का मूल कारण है, अन्यथा उनमें नाटक के पूर्ण गुण नहीं आने पाते। श्री उदय शंकर भट्ट, श्री उपेंद्रनाथ अश्क, श्री विष्णु प्रभाकर, श्री गिरजा कुमार माथुर, श्री प्रभाकर माजवे, श्री भारत भूषण अग्रवाल, श्री रामचंद्र तिवारी आदि ने कई सुंदर रेडियो नाटक लिखे हैं, जो समय समय पर रेडियो द्वारा प्रसारित भी हुए हैं।